ओम शांति। आज के सत्र में पिताश्री प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की दिव्य जीवन कहानी के बारे में हम जानेंगे। हम अपने शारीरिक पिता को जानते हैं जो हमें शरीर देते हैं, जन्म देते हैं, जिसको हम लौकिक पिता कहते हैं। परमात्मा हम सभी आत्माओं के पारलौकिक पिता हैं, अविनाशी पिता है, इस लोक से पर रहने वाले पारलौकिक पिता है। और ये है हम सभी के तीसरे पिता, अलौकिक पिता, प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जिसको आदि पिता भी हम कह सकते, जिस पिता से हमें श्रेष्ठ जीवन बनाने का उदाहरण मिलता है। शिव बाबा ज्ञान देते हैं, लेकिन जिसके माध्यम से परमात्मा ज्ञान देते हैं, वो माध्यम ब्रह्मा बाबा उस ज्ञान का प्रैक्टिकल एग्जाम्पल बनते हैं। इसलिए हम सबके लिए ब्रह्मा बाबा एक आदर्श है, उदाहरण है कि वे बन सकते हैं इतने महान, तो हम भी बन सकते हैं। भक्ति में हम कहते हैं कि भगवान ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि का सृजन करते हैं और ब्रह्मा को चतुर्मुखी ब्रह्मा, सहस्त्र भुजाधारी ब्रह्मा बताते हैं। सफेद वस्त्र में दाढ़ी मूछधारी ब्रह्मा दिखाया जाता है। देवताओं के चित्र में कीमती वस्त्र, अलंकार, आभूषण बताए जाते हैं, लेकिन ब्रह्मा को सफेद वस्त्रधारी, दाढ़ी मूछ वाला बताते हैं, क्योंकि वास्तव में ब्रह्मा इस मनुष्य लोक में मनुष्य आत्माओं में से एक है, जिसका माध्यम रूप में परमात्मा शिव उपयोग करते हैं। तो ये विवेक की बात है कि कोई चार मुख वाला और सहस्त्र भुजा वाला कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। ये सिंबॉलिक बताया जाता है, प्रतीक रूप में बताया जाता है। जैसे रावण के 10 शीश हम बताते हैं, तो कोई 10 मस्तक वाला व्यक्ति नहीं होता है, पर वास्तव में 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के, विकारों के वशीभूत स्त्री पुरुष के ग्रस्त जीवन का प्रतीक रावण है। तो रावण कोई व्यक्ति नहीं, लेकिन हम मनुष्य आत्माओं के अंदर जो विषय विकार है और उन विकारों के वश जो हमारा जीवन प्रवृत्ति चलता है उसका वो प्रतीक है। ऐसे देवियों को अष्ट भुजाधारी दिखाते हैं तो कोई आठ हाथ वाली देवी नहीं होती, पर उनकी आंतरिक अष्ट शक्ति का वो प्रतीक है। जिन आत्म शक्तियों के द्वारा हम बुराइयों रूपी असुरों का संहार करते हैं, तो भगवान ब्रह्मा द्वारा सृष्टि सर्जन करते हैं, इसका अर्थ क्या है? ऐसा नहीं है कोई नई पृथ्वी, नए सूर्य चांद सितारे बनाते हैं, या एक एक मानव का शरीर घड़ते हैं और उसमें प्राण डालते हैं। ये स्थूल सर्जन की बात नहीं है। आज सुबह भी आधा घंटे का जो सेशन था उसमें हम सभी ने समझा कि वास्तव में प्रकृति के पांचों ही तत्व अनादि अविनाशी है, उनकी उत्पत्ति का कोई सवाल नहीं है। कोई नए मकान, दुकान, रास्ते, चीजें बनाने से दुनिया नई नहीं बन जाती है। वो तो हम सब देख रहे हैं कि चीजें नई नई बनती ही जा रही है, उससे दुनिया नई नहीं बन जाती। लेकिन नई दुनिया बनाने का मतलब है हमें दुनिया को बदलना है तो व्यक्ति को बदलना, व्यक्ति की चेतना शक्ति को बदलना, उनके आचार विचार व्यवहार गुण कर्म संस्कार को बदलना। इसलिए कोई स्थूल सर्जन की बात नहीं है। तो परमात्मा जिस माध्यम के द्वारा नई दुनिया के योग्य आत्माओं को तैयार करने का जो भगीरथ कार्य शुरू करते हैं, उस माध्यम को ही प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। और सर्वप्रथम परमात्मा शिव ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं और उनके जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं और विश्व सेवा के लिए वे संपूर्ण रूप से समर्पित होते हैं, तो उसे कर्तव्यवाचक नाम प्रजापिता ब्रह्मा कहा जाता है। मनुष्यात्माओं का आदि पिता, आदि देव, आदि नाथ, एडम, आदम, ये हर धर्म में इसकी स्वीकार है। जैसे हमें इस ईश्वरीय ज्ञान में 48 वर्ष हुए, 48 वर्षों पूर्व हम गीता बहन थे। इस ईश्वरीय ज्ञान को और उनके नीति नियमों को जीवन में अपनाने के बाद हम ब्रह्मा कुमारी गीता बहन कहे जाते हैं। ऐसे प्रजापिता ब्रह्मा वो कर्तव्यवाचक नाम है। पिताश्री ब्रह्मा बाबा, जिसका पूर्व नाम दादा लेखराज था, सिंध हैदराबाद में 1876 में उनका शारीरिक जन्म हुआ, कृपलानी परिवार में, सिंधी परिवार, सिंध हैदराबाद जो अभी पाकिस्तान का एरिया है, उस समय तो भारत अखंड था और शुरू से ही उनके पिताजी तो एक प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल थे, साधारण परिवार था, लेकिन ईश्वरीय कार्य इनके द्वारा कराना होगा। दादा लेखराज ने अपनी बुद्धिमता से हीरे जवाहरात का व्यापार शुरू किया, ज्वेलर बने वो। गीता के पाठी थे, श्री नारायण के उपासक थे और उस जमाने में, क्योंकि बाबा ने अपना बिजनेस बहुत अच्छा डेवलप किया, उस जमाने में बाबा धनी थे और साथ साथ उतने ही दानी थे। ये दादा लेखराज का, क्योंकि बाबा बहुत प्रतिभाशाली थे लेकिन बहुत सात्विक विचार के थे, वैष्णव धर्म से वैष्णव थे, इसलिए आहार विहार की बहुत शुद्ध थी, बहुत दानी भी थे। चित्र में बताया है कि बाबा दानी भी उतने ही थे और सत्य की खोज होने के कारण बाबा ने 12 गुरु किए थे, क्योंकि उनको परमात्मा कौन है, सत्य क्या है वो समझना था। इसलिए एक उससे नहीं सत्य समझ में आया तो दूसरा तीसरा, ऐसे बहुत गुरु किए थे और बहुत गुरुओं के लिए उनको रिस्पेक्ट होता था। बीच में बाबा का लौकिक परिवार दिखाया, बाबा अपनी धर्म पत्नी, 2 बेटे और 3 बेटियों सहित, और उनका एक बेटा उनकी पत्नी बहू, पूरा परिवार इस कार्य में समर्पित हुआ था, चल अचल संपत्ति सहित। तो बाबा सात्विक विचार के थे और बहुत बड़े प्रसिद्ध ज्वेलर थे, राजा महाराजाओं के साथ उनका संबंध रहा, उदयपुर के राजा, नेपाल के राजा, राजाई घरानों में बाबा ज्वेलरी बनाकर देते थे और अंग्रेजों के जो बड़े बड़े वाइसरॉय वगैरह होते थे उस परिवार से भी बाबा का नाता था। और बाबा का सात्विक जीवन के कारण सबको उनके लिए बहुत रिस्पेक्ट था। तो बाबा को जो दिव्य साक्षात्कार हुए, क्योंकि बाबा अपने बिजनेस के लिए हैदराबाद से कलकत्ता जाते थे, क्योंकि कलकत्ता में भी बाबा की ज्वेलरी की शॉप थी। तो बीच में वाराणसी में उनके मित्र रहते थे, वहां बाबा गए और सुबह उठकर बगीचे में बैठकर भगवान को याद कर रहे थे तो उनको दिव्य साक्षात्कार हुआ। और उस साक्षात्कार में बाबा ने क्या देखा कि इस कलयुगी दुनिया का बहुत महाभारी विनाश होना है, प्राकृतिक आपदाओं के द्वारा, ग्रह युद्ध के द्वारा और एटेमिक वॉर के द्वारा निकट भविष्य में इस दुनिया का महापरिवर्तन होगा। इस प्रकार का 1936 में 60 वर्ष की आयु पर ये बाबा को साक्षात्कार हुआ। और उसके बाद विष्णु चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, क्योंकि बाबा श्री नारायण के उपासक थे, गीता के पाठी थे और वैष्णव आहार विहार के थे, तो श्री विष्णु का साक्षात्कार हुआ और नई स्वर्गीय दुनिया का साक्षात्कार हुआ। और ये आदेश उनको मिला कि ऐसी दैवी दुनिया स्थापन करने के लिए तुमको निमित्त बनना है। ये उनको दिव्य साक्षात्कार में आदेश मिला। तो बाबा बहुत अंतर्मुखी बन गए, गहरे चिंतन में चले गए कि ये कौन मुझे कह रहा है और मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो बाबा उस गहरे चिंतन में, और बाबा का मन बुद्धि जैसे कि इस दुनिया से उपराम होने लगा, बाबा कलकत्ता गए और जो उनका पार्टनर था उनको बाबा ने कहा कि मैं अब ये वाइंड अप करना चाहता हूँ और आप हिसाब कर लीजिए, जो मेरे हिस्से का हो वो आप मुझे दे दीजिए। वो पार्टनर तो बड़ा घबरा गया, क्योंकि बाबा की प्रतिभा के कारण ही इतना बिजनेस फैला हुआ था, क्योंकि बाबा के इतने बड़े बड़े राजा महाराजाओं के घरों से संपर्क था। उसने समझाया पर बाबा ने कहा कि नहीं, मुझे तो ऐसा प्रभु का आदेश मिला है और मैं अब इसको समेटना चाहता हूँ। तो जो पार्टनर ने उनको हिसाब करके दिया वो लेकर के बाबा कलकत्ता से वापस हैदराबाद में आ गए। और वहां भी, क्योंकि उनके जो चाचा थे मूलचंद चाचा, वो अंतिम श्वास पर थे और बाबा उनके पास जाते हैं, तो वहां भी उनको साक्षात्कार हुआ कि कैसे यहाँ से ज्योति निकलकर पांव के अंगूठे तक जाती है और फिर वो प्रकाश सिमटता सिमटता फिर वो कैसे बॉडी से निकल जाता है। तो ये आत्मा का साक्षात्कार हुआ कि कैसे आत्मा शक्ति पूरी बॉडी को चलाती है और फिर आत्मा निकलती है तो अपनी चेतना समेटते समेटते निकल जाती है। तो इस प्रकार बाबा को ये साक्षात्कार हुए। तो बाबा अपने घर में माना अंतर्मुखी बन गए, उपराम बन गए और प्रभु का ध्यान ज्यादा करने लगे। और घर में ही उनका एक बार जो सत्संग चल रहा था, एक गुरुजी आए थे, लालजी महाराज करके कोई गुरु उनके घर में आए थे, और बाबा कभी भी कुछ भी हो जाए सत्संग के बीच से उठते नहीं थे, इतना गुरुओं का रिस्पेक्ट रखते थे। पर उस दिन बाबा, क्योंकि बाबा को ये सारे साक्षात्कार हुए थे, मन चिंतन में था, कुछ दिव्य अनुभूतियां हो रही थी, बाबा कुछ अंदर अंदर खोज रहे थे कि ये मुझे कौन सब अनुभूति करा रहा है, तो बाबा बीच सत्संग से धीमे पांव से उठे और अपने कमरे की ओर जा रहे थे। और वो अपने कमरे में गए तो उनकी जो पुत्रवधु थी उसने सोचा कि बाबा तो कभी उठते नहीं हैं, क्या आज बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, क्या है। तो वो उनके पीछे पीछे जाते हैं और उनको वो जो देखा वो एक ऐसा दिव्य समझो दृश्य था कि बाबा के कमरे में पूरा माना प्रकाश से वो कमरा भरा हुआ था और बाबा भी लाइट के आकार में और जैसे एक ज्योति ऊपर से आके मस्तक में स्थित हुई और उस अनुभव में बाबा के मुख से वो आवाज निकला, शब्द निकले, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज ज्ञान स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निज प्रकाश स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। ये वो क्षण था जब ज्योति बिंदु स्वरूप शिव परमात्मा ने उनके तन में प्रवेश किया और उनके मुख से स्वयं परमात्मा ने अपना परिचय दिया कि मैं खुद ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप, आनंद स्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। और बाबा ने अपने घर में, क्योंकि ज्ञान स्पष्ट नहीं था, अनुभूति बहुत दिव्य थी, तो बाबा ने घर में ही सत्संग शुरू किया और काफी माताएं बहनें सत्संग में आने लगी। ओम की धुनी बाबा कराते थे और जब ओम की धुनी ऐसे कराते थे तो आई हुई बहनें, मेजोरिटी माताएं बहनें और कुछ भाई, कुछ परिवार ध्यान में जाते थे और उन सबको भी श्री कृष्ण का, सतयुग का, दैवी दुनिया का साक्षात्कार होता था और उस साक्षात्कार में वो ध्यान में चले जाते थे। इस ओम की धुनी के कारण लोग इस सत्संग को ओम मंडली कहने लगे। उस सत्संग में जो बहने आई उसमें एक बहुत प्रतिभाशाली जो बहन थी जिसका नाम राधे था, ओम राधे, और आते ही बाबा ने परख लिया और उसको निमित्त बनाया। वो 16 वर्ष की, 15 वर्ष की आयु पर आए थे, कुमारी थे, तो बाबा ने उसको सत्संग की जिम्मेवारी दी कि आप रोज ओम की धुनी कराओ और गीता पाठ करते थे, क्योंकि और कोई ज्यादा ज्ञान नहीं मिला था और बाबा परिवार सहित कश्मीर चले गए, वहाँ और गहराई में चिंतन करने के लिए और इस दिव्य अनुभव को और समझने के लिए। और जो जो अनुभूतियां होती थी शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा को जो जो ज्ञान देते थे, बातें समझ में आती थी, तो वो बाबा रोज पत्र लिखते थे और इस तरफ मम्मा हम इसको कहते हैं, मातेश्वरी जगदम्बा ओम राधे जिसका नाम, वो वहाँ सत्संग में समझाती थी। तो यहाँ आने से, सत्संग में आने से सबके स्वभाव में, बोलचाल में, क्योंकि जब व्यक्ति दिव्य अनुभूति करता है तो नेचुरली बहिर्मुखता और सब चीजें जो कलियुगी संस्कार है वो बदलने लगते हैं, तो पूरे शहर में बहुत अच्छा प्रभाव पड़ने लगा और काफी सारी माताएं बहनें परिवार इसमें आने लगे। कश्मीर से आने के बाद 7 अक्टूबर में बाबा ने अपनी पूरी प्रॉपर्टी जो भी चल अचल मकान या जमीन जायदाद जो भी धन संपत्ति थी वो सब कुछ बाबा ने समर्पित किया 18 जनवरी 1938 में। बाबा ने ये 5 बहनों के नाम ट्रस्ट बनाया क्योंकि भगवान का उनको आदेश मिला कि ये जो आध्यात्मिक कार्य है तुम्हें माताओं और बहनों के द्वारा करना है। अब तक धर्म का कार्य द्वापर युग से भाइयों के द्वारा हुआ, जो भी धर्म स्थापक आए तो समाज धीरे धीरे पुरुष प्रधान बनता गया। तो इससे फिर से बैलेंस करने के लिए परमात्मा ने ये आदेश दिया कि तुमको ये कार्य माताओं और बहनों के द्वारा करना है। माता प्रथम गुरु है, माता बच्चे को संस्कार देती है, चरित्र निर्माण करती है, विद्या की देवी सरस्वती गाई है, इसलिए ये माताओं और बहनों को निमित्त बनाना है। तो बाबा ने वो कुछ बहनों के नाम ट्रस्ट बनाया। आज भी जो अपनी ईशु दादी जी हैं, जो बाबा के समय से शुरू से 8 वर्ष की आयु में वो समर्पित हुए थे और साकार बाबा के साथ शुरू से पूरा ऑफिस वर्क और फाइनेंस देखती थी, तो आज तक वो दादी हैं हमारी और वो ही पूरा इतना 80 वर्षों से यज्ञ का पूरा ऑफिशियल कॉरेस्पोंडेंस और फाइनेंस जो भी है, यज्ञ में जो धन साधन आते हैं उनके हाथ में आते हैं और फिर वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट को दिए जाते हैं। तो वो ईशु दादी के पास आज भी ब्रह्मा बाबा ने जो अपना समर्पण का पत्र लिखा था वो दादी के पास अभी भी है। और बाबा ने नियम बनाया कि जो भी इस सत्संग में आएंगे, अपना जीवन देंगे, उनको अपने माता पिता का परमिशन पत्र लेकर के आना है। ये प्रथम शुरू से ही नियम रहा, पर लोग नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आज भी कोई किसी के परिवार की बहने या कोई भी गुम होते हैं तो लोग यहाँ ढूंढने आते हैं कि यहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम में रख लिया होगा। यहाँ ऐसे कोई भी आके रह जावे ऐसा नहीं है। आज हम सभी बहनों का भी माता पिता का सम्मति पत्र, हम सबकी फाइल बनी हुई है, उनकी सम्मति से ही हम यहाँ आ सकते हैं। और जिनको सम्मति नहीं मिलती है, कई माँ बाप विरोध करते हैं, कई बच्चियां पवित्र बने योगी बने ये नहीं पसंद है, समाज के कारण शादी करवाना चाहते हैं तो वो परमिशन लेटर नहीं देते हैं, परंतु वो बहने सहन करती हैं, सितम सहन करती हैं, पर अपना लक्ष्य मजबूत रखती हैं, तो आखिर माँ बाप खुश होके और उनकी जो आध्यात्मिक जीवन बनाने की लगन देखकर फिर उनको विश्वास होता है और फिर वो सम्मति पत्र देते हैं। मतलब ये शुरू से विधि रही कि इस यज्ञ में जो भी समर्पित होकर आएगा वो अपनी माँ बाप की राजी खुशी का पत्र लेकर आएगा। तो शुरू में ही लगभग 320-350 जितने लगभग भाई बहनों ने, मेजोरिटी बहने माताएं कुमारियां और कुछ परिवार कुछ बच्चों को लेकर के भी आए और इस प्रकार ये सत्संग शुरू हुआ। जब इस ज्ञान योग का सत्संग करते करते सबके जीवन में परिवर्तन होने लगा, उनके आहार विहार शुद्ध होने लगे, पवित्र जीवन का लक्ष्य पक्का बनने लगा, तो फिर इन सबके लौकिक परिवार के तरफ से विघ्न आना शुरू हुआ। बाबा ने इस तरफ जो आए थे समर्पित, उसमें से जो बच्चे थे उनके लिए एक बोर्डिंग स्कूल खोला, जिसमें ये सारी दादियां, मेजोरिटी दादियां, जो रतन मोहिनी दादी जी उद्घाटन में आए थे, वो 12 वर्ष की आयु में समर्पित हुए थे। हमारी जो दादी गुलजार जी हैं, एडिशनल हेड, अभी हम फोटो आपको दिखाएंगे, वो 9 वर्ष की आयु के थे। ये सब अपने माँ बाप माता के साथ यज्ञ में आए, तो बाबा ने इनके लिए बोर्डिंग स्कूल खोली, लौकिक शिक्षा के साथ शुरू से इन बच्चों को आध्यात्मिक ज्ञान दिया गया, और वो ही बच्चे आज दादियों के रूप में हम अभी देख रहे हैं। तो जब इनके जीवन में पवित्रता का लक्ष्य बनने लगा, आहार शुद्धि का लक्ष्य धारणा बनने लगी, तो इनके लौकिक परिवार समाज के तरफ से काफी विघ्न आने लगे, और लोगों को ये हुआ कि ये घर बार छुड़ाते हैं, भाई वहां जो जाते हैं वो शादी नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से सिंधी समाज में काफी बातें उड़ने लगी, क्योंकि पवित्र जीवन पवित्रता योग का फाउंडेशन है, और पवित्रता के बल से ही सतयुगी दुनिया की हम स्थापना कर सकते हैं। इतना महापरिवर्तन का जो कार्य है वो पवित्रता के बल से ही कर सकते हैं। आप देखो आजादी की मूवमेंट जब गांधी जी ने शुरू की, तो जब एक ध्येय से हम सेवा कार्य में निकलते हैं तो कितनों ने अपने जीवन को पवित्र बनाया, क्योंकि तब हम अपना समय समाज की सेवा में दे सकते हैं। जिन्होंने अपना परिवार बनाया है तो उनको तो अपने परिवार के लिए फिर समय देना होता है, और हमारे जैसे जो अपनी अनमैरिड आयु में आए और हमारी बुद्धि में ज्ञान बैठ गया, तो हम लक्ष्य बन जाता है कि हमें भगवान से जीवन जोड़ना है और विश्व की सेवा करनी है। हम शादी करें और एक परिवार की सेवा करें, इससे क्यों नहीं भगवान से जीवन जोड़े और विश्व की आत्माओं की सेवा करें। तो इन सब धारणाओं के कारण, क्योंकि लोग तो नहीं समझते थे कि ये कौन आदेश दे रहा है, कौन सिखा रहा है, तो ब्रह्मा बाबा के सामने बहुत सारे विघ्न आए, काफी पिकेटिंग हुआ, धरना हुआ, सत्संग में आने वाली बहनों को मारा पीटा गया, परिवार वालों ने रोका, और बाबा को भी खत्म कर देने की कई साजिश रची गई। जैसा हर अच्छे कार्य में विघ्न आते हैं, इस प्रकार के विघ्न आने लगे। तो 2 वर्ष के बाद फिर बाबा ने पूरा सत्संग, माना ये 350 लोग कराची में शिफ्ट हुए, वहां बाबा ने ऐसे बंगले लिए और वहां फिर सत्संग शुरू हुआ। गवर्नमेंट ने भी काफी मदद की, समाज के कई अग्रगण्य लोगों ने और गवर्नमेंट ऑफिसरों ने इसकी इंक्वायरी करके सारी बातों को समझा और फिर जनता को कंट्रोल किया और लोगों को समझाया कि वास्तव में ये चीजें क्या है। तो 12 वर्ष कराची में ये सारा सत्संग चला। ये वो बोर्डिंग जो हॉस्टल बाबा ने बनाई थी बच्चों की, उसका दृश्य है। फर्स्ट बेंच पर जो दो बच्चियां बैठी हैं, पहली बड़ी है और बाजू में जो उनसे छोटी है, यही यीशु दादी और उनकी छोटी बहन, ये दोनों उस समय समर्पित हुए थे और बाकी सारी जो भी कुमारियां समर्पित हुई थी। तो उसमें जो युवा दादियां थी वो फिर इनको लौकिक पढ़ाई भी पढ़ाती थी और बाबा इनको ज्ञान योग के संस्कार देते थे। इनको सिंध, हैदराबाद में, कराची में, समुद्र किनारे भी बाबा ले जाते थे। और उस जमाने में 1936 का समय, आप समझ सकते हैं कि स्त्रियां चार दीवारों के बीच में थी और उनको पढ़ने भी नहीं दिया जाता था, मताधिकार भी नहीं था, और बहुत मतलब समाज में बहनों को गौण समझा जाता था। तो बाबा ने ये कुमारियों को ये ड्रेस पहनाकर उनको मतलब मॉर्निंग एक्सरसाइज वगैरह भी कराते थे। और क्लिफ्टन, ये क्लिफ्टन का फोटो है जो कराची में समुद्र किनारे का ये स्थान है, बाबा सबको वहां ले जाते थे और साइलेंस में भी बिठाते थे और हर प्रकार से उनका लालन पालन होता था। तो ये स्त्रीपन भूले और हम आत्मभान में स्थित हो जाएं, क्योंकि जब व्यक्ति बॉडी कॉन्शियस बनता है, मुझे स्त्रीपन का भान आता है तो कई मेरे अंदर लिमिटेशंस क्रिएट होती है, नाजुकपन आएगा, कमजोर कोमलता आएगी। तो बाबा ने आत्मा शक्ति है ये पाठ पढ़ाने के लिए बाबा इस प्रकार से इनको स्कूल का ड्रेस इनका बनाया था और समुद्र किनारे बाबा ऐसे ले जाते थे। तो ये सब उसमें समर्पित हुई बहनों का ये फोटो है। तो 14 वर्ष टोटल, 14 वर्ष, 2 वर्ष हैदराबाद में और 12 वर्ष कराची में, टोटल 14 वर्ष लगातार 350 भाई बहनों का बाबा ने लालन पालन किया। और ये चारों ही सब्जेक्ट, ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, जीवन में सद्गुणों की धारणा और समाज की रूहानी सेवा, ये हमारे चार सब्जेक्ट है। ये चारों ही सब्जेक्ट का बहुत सघन प्रशिक्षण इनको दिया गया, प्रैक्टिकल संस्कार दिए गए। और जब ये आध्यात्मिक रूप से परिपक्व बने तो 1950 में यह विश्वविद्यालय माउंट आबू में स्थानांतरित हुई। वहां से स्टीमर द्वारा ये कराची से ओखा बंदर आए और वहां से बाय ट्रेन यहाँ माउंट आबू आए। तो बाबा ने पहले 4-5 का ग्रुप यहाँ भेजा था और इंडिया में, और बाबा का एक गुरु था अहमदाबाद में, गंगेश्वरानंद जी, अहमदाबाद में वेद मंदिर है, वहां ये स्वामी गंगेश्वरानंद जी रहते थे। तो बाबा ने उनके पास भेजा कि उनसे पूछो कि इतने लोग रह सके, ऐसे बड़े मकान वगैरह प्रबंध कहाँ मिल सकता है। तो गंगेश्वरानंद जी ने बताया कि अभी आप यहाँ माउंट आबू पर जाइए, वहाँ राजाओं के बड़े बड़े महल खाली पड़े हैं, तो वो आपको वहाँ किराए पर मिल जाएंगे। तो आबू में भरतपुर, राजस्थान का शहर है, भरतपुर स्टेट के महाराजा का बड़ा महल था, ब्रिज कोठी, अभी वहां सनराइज होटल बन गई है। तो उसमें ये लोग आए और 14 वर्ष के प्रशिक्षण के बाद ये आध्यात्मिक रूप से परिपक्व हो गए थे, तो बाबा उनको ले आए और 2 वर्ष के बाद 1952 में फिर बाबा ने आदेश दिया कि अब तुम्हें विश्व की सेवा करनी है, अब आप दुनिया में जाएंगे तो दुनिया का रंग आपको नहीं लगेगा, पर आपको ये आध्यात्मिक रंग सबको लगाना है। तो बाबा ने अलग अलग शहरों में अलग अलग बहनों को भेजा। उस समय विद्यालय के पास कोई संपर्क नहीं था, कोई धन नहीं था, कोई साधन नहीं था, पर 14 वर्षों के त्याग तपस्यामय जीवन का तेज था, अनुभव था, वो शुद्ध चरित्र था, परमात्मा में प्यार था, सेवा की भावना थी, सत्य ज्ञान की शक्ति थी। बस इस अलौकिक पूंजी को लेकर ये लोग सेवा में गए और प्रथम सेवा केंद्र दिल्ली में जमुना के कंठे पर शुरू हुआ था। तो इस प्रकार इन्होंने अपने अलौकिक प्रतिभा से सेवा कार्य किया और जगह जगह सेवा केंद्र खुलते गए। 1969 तक बाबा साकार में थे, तब तक भारत में आए तो बाबा 75 वर्ष के हुए और फिर 1969 तक बाबा 93 वर्ष के थे, तो तब तक भारत में लगभग 137 से अधिक माना 150 जितने अलग 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 शहरों में या कोई तहसील में ऐसे सेवा केंद्र खुलते गए। और जो भी हमारे सेवा केंद्र खुलते हैं, शुरू से यही विधि है कि निमंत्रण पर खोलते हैं। मान लो ये ईश्वरीय ज्ञान आपको मिला है और इससे आपका जीवन पवित्र बना, योगी बना, निर्व्यसनी बना, आपको जीवन में सुख शांति मिली, तो नेचुरली आप चाहेंगे कि भई हमारे गांव में सेंटर खोलो, हमारे शहर में खोलो, हमारे एरिया में आपका केंद्र नहीं है, तो इनविटेशन पर ये केंद्र खुलते हैं। और जो इनविटेशन देते हैं वो 2 साल तक उस केंद्र का खर्च पुल ऑन करते हैं और उसके बाद उस केंद्र से जो भाई बहने तैयार होते हैं, नियमित रूप से ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं और इनके नीति नियमों में चलते हैं, फिर वो लोग विलिंगली वॉलंटियरी कंट्रीब्यूट करते हैं और सर्व के सहयोग से फिर वो सेवा केंद्र फाइनेंशियली अपने पांव पर खड़ा हो जाता है। तो हमारे हरेक सेवा केंद्र इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है, अपने पांव पर है। पहले कोई आमंत्रण देता है, वो खर्च उठाता है और फिर उस केंद्र से जो राजयोगी भाई बहने तैयार होते हैं वे उसके खर्च को पुल ऑन कर लेते हैं। इस प्रकार अभी भी हमारे सभी सेवा केंद्र इकोनॉमिकली सेल्फ डिपेंडेंट हैं और सभी सेवा केंद्र हेडक्वार्टर को मदद करते हैं। जैसे बच्चे बाहर कमाने जाते हैं और वतन में माँ बाप को भेजते हैं अपना सहयोग, ऐसे ही ये सभी केंद्र के भाई बहने बहुत दिल से तन मन धन से यहाँ मददगार बनते हैं और हेडक्वार्टर उन सब भाई बहनों के लिए ही, उनकी उन्नति के लिए, और मेडिटेशन की गहराई के लिए यहाँ कार्यक्रम आयोजित करता है। तो ये जैसे कि एक फैमिली सिस्टम से सारा इनका इकोनॉमिकल साइड चलता है और ये इतना अच्छी तरह चलता है कि विद्यालय के लिए इकोनॉमिकल कोई प्रॉब्लम कभी आता नहीं है। हमें कोई गवर्नमेंट ग्रांट नहीं लेनी पड़ती है, हमें कोई फंड रेज नहीं करने पड़ते हैं, पर यहाँ आने वाले भाई बहनों को ही इस ज्ञान योग से उनके अपने जीवन में इतना परिवर्तन आता है, फायदा होता है कि जो तन मन धन समय वो व्यसन में, फैशन में, पिक्चरों में, होटलों में, अंधश्रद्धा में, गलत रीत रस्मों में जो वेस्ट करते होते थे वो सारा उनका बच जाता है और वही तन मन धन फिर यहाँ वो सहयोग के रूप में देते हैं और वो भी अपनी राजी खुशी से। इसमें कोई कंपल्शन नहीं है, कोई फी नहीं है, पर हर एक बहुत दिल से मदद करते हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और आप देखते हैं कि यहाँ ब्रह्मा बाबा से लेकर कोई भी व्यक्ति का कहीं भी नाम नहीं है, चाहे वो कितना भी सहयोग देते हैं। तो अपना नाम मान शान की बात नहीं है, लेकिन हम भगवान के बच्चे हैं और भगवान विश्व कल्याण का कार्य के लिए यज्ञ रचा है तो हम उनके साथी बनते हैं। तो इसलिए यहाँ कोई व्यक्ति विशेष की बात भी नहीं है और कोई व्यक्ति का कहीं नाम भी नहीं है। जब बाबा थे और कोई आबू में आते थे और पूछते थे बाबा को कि ये सारा किसकी प्रॉपर्टी है, तो बाबा कहते थे कि ये सब बच्चों की है। और बच्चों से जब कोई पूछते थे कि ये सब किसका है, तो सब भाई बहने कहते थे ये बाबा का है। तो माना किसी को भी इसके मालिकपन की कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार सेवा केंद्र खुलते गए। ये है बाबा के साथ, शुरू से बाबा का चाचा का लड़का कजिन समर्पित हुआ था, विश्व किशोर भाऊ उसका नाम, जो बिल्कुल राइट हैंड बनकर वो भी पूरा समर्पित हुए और बाबा का सारा कार्य वो करते थे। जब आज का दिन इसलिए मैं याद कर रही हूँ, रमेश भाई जी ने आज जिनकी डेड बॉडी का अग्नि संस्कार हुआ, वो जब ज्ञान में आए और तैयार हो गए तो फिर 1967 में विश्व किशोर भाऊ का माना उन्होंने शरीर छोड़ा और उसके बाद यज्ञ का पूरा लीगल फाइनेंस सारा डिपार्टमेंट ये अपने रमेश भाई शाह जी संभालते रहे। तो बहुत ही बड़े पिलर आत्मा का जाना हुआ है और उसका बहुत बड़ा योगदान इस विद्यालय में रहा है। बाबा का कार्य है तो बाबा उनके किए हुए कार्य को संभालने के लिए भी और आत्माओं को तैयार कर देंगे और बाबा का कार्य आगे चलेगा। तो ये बॉम्बे का है। बॉम्बे में रमेश भाई जी के माँ शांता माता, क्योंकि बॉम्बे में जब प्रथम सेवा केंद्र खुला तो सबसे पहली आत्मा तन मन धन से मदद करने वाली ये रमेश भाई जी की ही माता जी थी। तो ये बॉम्बे के गाम देवी सेवा केंद्र का चित्र है। चित्र में आप देखिए बाबा के पीछे जो दो दादियां खड़ी हैं, इसमें एक दादी प्रकाशमणि जी हैं और उनके साथ जो है वो दादी ब्रिजेंद्रा जो बाबा की पुत्र वधु थी, उसने ये विजन देखा था। पहला परमात्मा का दिव्य प्रवेश, उस प्रवेशता की साक्षी ये दादी ब्रिजेंद्रा थी जो महाराष्ट्र जोन की हेड थी और उन्होंने भी अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। तो ये बाबा शुरू में बॉम्बे, दिल्ली, पटना, कानपुर, ऐसे लखनऊ, कुछ कुछ स्थानों पर बाबा खुद भी जाते थे और कैसे भाई बहने, बच्चे, बड़े छोटे सबको रूहानी पालना देकर ईश्वरीय जीवन में कैसे ले आते थे। ये परिवार के, ये दादी जानकी जी बाबा के एक तरफ बैठे हैं, जब दादी पुना में थे और पुना से परिवार लेकर के बाबा के पास आए हैं। ये मातेश्वरी जगदम्बा 1965 में उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, बहुत तेजस्वी और बहुत, क्योंकि बाबा के बनते ही छोटी आयु में 45 वर्ष की आयु में उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा, पर बहुत ही अंतर्मुखी और पूर्ण समर्पण बुद्धि, मतलब बाबा का कहना और मम्मा का करना, इतना समर्पण बुद्धि कि कोई प्रश्न नहीं, कोई ओपिनियन नहीं, इतना मम्मा समर्पित बुद्धि थी। तो बाबा ने उसको ही यज्ञ माता बनाया, जबकि वो कुमारी थी पर ज्ञान से वृद्ध थी, गुणों से बड़ी थी। तो बाबा ने फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड मम्मा को बनाया था। तो मम्मा में बहुत सुंदर ज्ञान देने की कला थी, तो ऐसे अलग अलग केंद्रों पर मम्मा सेवा के लिए जाती थी। ये बाबा का चित्र है पांडव भवन के आंगन का, कल आप सभी आबू घूमने जाएंगे। तो जो हमारा फर्स्ट, जो भरतपुर राजा के महल में ठहरे, उसके बाद धौलपुर राजा के हाउस में, कोटा हाउस में, कोटा के महाराजा का जो महल, और अभी जो पांडव भवन कॉम्प्लेक्स है वो पोखरान के राजा का था। छोटा सा मकान था और 7 एकड़ जमीन थी। फिर थोड़ा 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 बनाते बनाते आसपास की थोड़ी जमीन 10 एकड़ में पांडव भवन है। तो वो फर्स्ट कैंपस जहां बाबा, मम्मा और ये दादियां, पूरा यज्ञ वहां पर आया, इसलिए वो शक्तिशाली तपोभूमि है जहां बाबा, मम्मा, दादियों ने तपस्या की थी। तो बाबा का कमरा भी है वहां, बाबा जिस झोपड़ी में बैठकर सबसे मिलते थे वो झोपड़ी भी है, वो तो रिनोवेट की हुई है। बाबा के समय तो बहुत सिंपल थी और बाबा को जहां अग्नि संस्कार दिया गया 1969 में 18 जनवरी बाबा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ा और लास्ट बाबा 18 जनवरी मॉर्निंग में नहीं आए क्लास में, बाबा की तबीयत ठीक नहीं थी, और शाम को फिर सबको इकट्ठा किया और बाबा ने कुछ महावाक्य उच्चारण किए और लास्ट 3 मुख्य शिक्षा बाबा ने दी, निराकारी भव, माने शरीर भान में नहीं रहो, आत्म भान में रहो, निराकारी भव, निर्विकारी भव और निरहंकारी भव। ये 3 बाबा के वरदान आज भी हम सदा सामने रखकर खुद पुरुषार्थ करते हैं अपने आप को ऐसा बनाने का। और बाबा कमरे में चले गए, तो दादी प्रकाशमणि जी बाबा के पीछे पीछे कमरे में थोड़ी देर में गए तो देखा कि बाबा लेटे थे, तबीयत ठीक नहीं थी और बाबा के हाथ में, बाबा ने दादी का हाथ हाथ में लिया और बाबा ने अपनी आध्यात्मिक शक्ति जैसे कि दादी को दी और बाबा ने अपना भौतिक शरीर छोड़ दिया। तो ये क्योंकि फाउंडर मीडियम थे ब्रह्मा बाबा और वो गए तो उस समय दादी प्रकाशमणि जी वहां हाजिर थे। उन्होंने हिम्मत से सारा वो जो भी उस समय सबको सूचित करना, बुलाना, प्रबंध करना और वो बाबा का अंतिम संस्कार का सारा कार्य हुआ 21 जनवरी के दिन। और उस दिन जो हमारी दादी गुलजार जी हैं, एडिशनल हेड, ये मम्मा, ये दादी प्रकाशमणि जी जो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी और 38 इयर्स 1969 से 2007 तक लगभग 38 इयर्स दादी जी ने इस यज्ञ को संभाला, विस्तार किया, वृद्धि की। बाबा के समय 150 केंद्र थे, दादी ने जब शरीर छोड़ा तो 8,500 सेवा केंद्र थे। तो पूरे मतलब दादी जी के नेतृत्व में और इतनी जो 21,000 समर्पित भाई बहने, मेजोरिटी बहने और कुछ 5,000 जितने भाई जो यहाँ हेडक्वार्टर में मेजोरिटी हैं, हमारे स्टेट हेडक्वार्टर में और कुछ सब जोन हेडक्वार्टर में भी होते हैं, तो कुछ 5,000 तो मैक्सिमम, इतने भाई इससे भी कम होंगे, पर लगभग 16,000-17,000 समर्पित बहने हैं। तो इतनी मतलब दादी में उमंग उत्साह था और दादी इतनी फोकस थी अपने लक्ष्य में कि और कोई ऊपर नीचाई, वैरायटी, संस्कार, हम सभी नंबरवार, पर ये बातें दादी ने माइंड नहीं की। दादी ने सदा अपने लक्ष्य में फोकस रहकर इतना विस्तार किया। तो ये दादी सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बनी और उनके साथ एडिशनल हेड दादी दीदी मनमोहिनी जी थे जो बाबा के होते ही बाबा के साथ मम्मा के बाद दीदी जो थी वो मधुबन में ही रहती थी और कारोबार संभालती थी। दादी बॉम्बे में थे और लास्ट में दादी बाबा के सामने थे। तो दादी हेड और दीदी एडिशनल हेड बने, पूरा नॉर्थ इंडिया की सेवाओं का विस्तार दीदी संभालते थे। बहुत ही उनकी परख शक्ति और निर्णय शक्ति और डिसिप्लिन में बहुत ही मजबूत थे। अभी जो हमारी हेड है वो है आदरणीय दादी जानकी जी जो 102 वर्ष के हुए हैं और दादी 74 में बाबा ने उसको लंदन भेजा। उस समय क्योंकि 71 में फर्स्ट डेलीगेशन नहीं, उससे पहले 54 में जापान में सेवा के लिए प्रकाशमणि दादी, रतन मोहिनी दादी और हमारे एक यज्ञ निवासी बड़े भाई थे आनंद किशोर दादा, वो गए थे और उन्होंने जापान, सिंगापुर, हांगकांग, मलेशिया, इन पूर्व देशों में सेवाएं की थी और बाबा के ज्ञान का बीज बोया था। पूर्व के देशों में प्रथम हांगकांग में सेवा केंद्र खुला और फिर 72 में दूसरा डेलीगेशन लंदन गया और उसमें पांच का वो ग्रुप था जिसमें रमेश भाई जी भी थे और पश्चिम के देशों में लंदन अमेरिका आदि देशों में सेवा की और लंदन में प्रथम सेवा केंद्र खुला। तो 74 में बाबा ने जानकी दादी जी को लंदन भेजा और ये दादी जानकी जी का करिश्मा कि दादी के नेतृत्व में 140 देशों में 500 से अधिक सेवा केंद्र खुले एक आध्यात्मिकता के बल से। कोई इतना पढ़े लिखे नहीं, कोई भाषा भी नहीं जाने, पर भगवान का सत्य ज्ञान और भगवान के गुणों को जीवन में धारण करने से कैसे हम कोई भी धर्म जाति भाषा कल्चर की आयु वाले लोगों को भी हम आध्यात्मिक बना सकते हैं। अभी आप यहाँ शिवरात्रि और होली, माना ये फ़रवरी मार्च में अगर कभी आप आए तो यहाँ फुल फॉरेनर्स भाई बहने होते हैं। ऊपर के दोनों कैंपस अक्टूबर से मार्च तक विदेश के भाई बहनों के लिए होता है और अक्टूबर से मार्च के बीच में खास अक्टूबर दिसंबर फ़रवरी और मार्च इसमें तो 1200-1500 विदेश के भाई बहने होते हैं। कितनी भाषाओं में ट्रांसलेशन चलता है, हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से और सभी भाषाओं में ये ट्रांसलेशन बूथ बने हैं और हरेक अपना FM रेडियो सेट करता है और उस पर वो सुनते हैं। और उनकी जो एनुअल मीटिंग्स है वो भी यहाँ पर होती है तो हर देश का प्रतिनिधि उसमें आता है। तो इस प्रकार दादी जी में वो विशेष कला जिनकी रूहानी पालना और योग शक्ति से ज्ञानदान देने की कला से इतने केंद्र खुले। अभी बड़ी दादी के शरीर छोड़ने के बाद 2008 से दादी जी अब यहाँ रहते हैं और यहाँ ही हैं। 102 वर्ष की आयु के, कुछ तबीयत ढीली होने के कारण आप सबसे नहीं मिल पाए हैं, नहीं तो वो उद्घाटन में ही आने वाले थे, पर उनकी फिर भी आज हिम्मत, आज दादी जी खुद चले और उन्होंने रमेश भाई जी को मुखाग्नि दी। और ये हैं भगवान की विशेष रचना दादी गुलजार जी, जो एडिशनल हेड हैं और स्पेशल ट्रांस मैसेंजर है। भगवान ब्रह्मा बाबा के अव्यक्त होने के बाद सारे लेटेस्ट गाइडेंस, बाबा की अव्यक्त वाणी दादी गुलजार के द्वारा चलती है और उनके द्वारा ये डिवाइन मैसेजेस आते हैं। दादी जी भी यहाँ बहुत ठंडी होने के कारण थोड़े दिन पहले ही 22 जनवरी ही दादी बॉम्बे गए हैं और फिर जब यहाँ आगे का प्रोग्राम 20 फरवरी को शुरू होना है तो फिर उस समय दादी यहाँ आ जाएंगे। तो ये इनकी बहुत ध्यान में जाना साक्षात्कार और इनके माध्यम से अब सारा लेटेस्ट गाइडेंस मिलता है। और बताइए ये कौन है? ये है ब्रह्मा बाबा की लौकिक पुत्री, वो भी समर्पित हुई नॉर्थ ईस्ट स्टेट की, वो जोनल हेड बनी दादी निर्मल शांता जी। दादी बाबा जैसी दिखती थी और बहुत उनसे रॉयलिटी की अनुभूति हम सब करते थे। दादी सदा कहती थी कि मेरे जैसा भाग्यशाली कोई नहीं, क्योंकि 3-in-1 ऐसे दादी कहती थी। ब्रह्मा बाबा मेरा लौकिक पिता भी है, अलौकिक पिता है, और शिव बाबा भी उनके द्वारा मिलता है, तो मेरा तो एक में ही तीनों पिता है। तो बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नेपाल और आसाम के जो आगे 7 states है छोटे, वो सारा दादी संभालती थी। उन्होंने भी अपना भौतिक शरीर छोड़ा। ये हैं दादी चंद्रमणि जी, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड, नॉर्थ वेस्ट के जो भी ये स्टेट्स उनकी हेड थी, और बाबा उनको सदा शेरे पंजाब कहते थे, शेरनी कहते थे, क्योंकि दादी बहुत शक्तिशाली थी। और भारत में विद्यालय के आने के बाद पंजाब में सबसे ज्यादा विद्यालय को फेस करना पड़ा, क्योंकि शुरुआत वहां हुई और बहुत विघ्न आए, पर दादी इतनी शक्तिशाली थी। एक अमृतसर शहर से उस समय 100 जितनी बहनें समर्पित हुई थी, तो बहुत हलचल मची थी, बहुत विघ्न आए, पर आखिर सत्य तो सत्य ही है और लोग समझने लगे कि ये ईश्वरीय कार्य क्या है। उन्होंने भी 97 में अपना भौतिक शरीर छोड़ा, वो भी जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड थी। ये है हमारी मनोहर इंदिरा दादी जी, जो जमुना के किनारे प्रथम सेवा का कार्य शुरू किया जिसने, और दादी ने पूरे हरियाणा में बहुत सेवा की। और 69 में बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी को हेडक्वार्टर में ही स्थायी किया गया, और जो हमारा ज्ञान सरोवर कैंपस है उनकी वो डायरेक्टर थी। 10 साल उन्होंने पूरा उस कैंपस को हैंडल किया। 2008 में उन्होंने अपना भौतिक शरीर छोड़ा। मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि मैं दादी के साथ सेवा करने का मुझे पूरा समय मौका मिला। और दादी में बहुत विशेष कला थी, आध्यात्मिक ज्ञान को इतना सहज और रमणीक ढंग से समझाती थी कि ज्ञान समझाने की सेवा में अक्सर बाबा दादी का, मनोहर दादी जी का नाम बहुत लेते रहे। और दादी ये जो मैं आज सुना रही हूँ, बाबा की जीवन कहानी, सदा आंखों देखा हाल मनोहर दादी जी सुनाती थी, और उसमें बहुत उनकी प्रवीणता थी। और ये दादी शांतामणि जी, जो इस शांतिवन कैंपस की हेड थी, पहले यूपी स्टेट की हेड थी, पर फिर हेडक्वार्टर के हिसाब से दादी को यहाँ शिफ्ट कर लिया गया। ब्रह्मा बाबा के समर्पित होने के बाद ये दादी के पिताजी, रिजुमल नाम था, वो पूरे परिवार और प्रॉपर्टी सहित समर्पित हुए थे। और बाबा जब कश्मीर गए थे तो इनके पिताजी कश्मीर में घूमने गए थे, और ये गुलमर्ग में कोई बंगला लेकर बाबा और परिवार वहां रहते थे, तो ये दादा वहां से पास हुए, तो उन्होंने वहां निर्मल शांता दादी, बाबा की लौकिक बेटी, बैठी थी छोटी आयु में उस समय, तो 1936-7 की बात, तो उन्होंने पूछा कि बेटी गुलमर्ग का रास्ता किधर से है, नहीं पहाड़ क्या है, दूसरा एक है ना वहां देखने का, पहलगांव, हाँ, तो उन्होंने पूछा पहलगांव का रास्ता किधर से जाता है, तो बोला मुझे पहलगांव का रास्ता नहीं पता है, परम धाम का रास्ता मैं बता सकती हूँ। तो उनको बड़ा प्रभाव पड़ा कि ये छोटी बच्ची ऐसे कैसे जवाब दे रही है, तो बोला आओ मैं अपने पिताजी से मिलाती हूँ। तो बाबा उनसे मिले और वो इतने प्रभावित हुए कि पूरे परिवार सहित वो समर्पित हुए। और ये है हमारी रतन मोहिनी दादी जी, जो आपको उद्घाटन में मिले थे, पांडव भवन कॉम्प्लेक्स के डायरेक्टर, अभी तो वो इस विश्वविद्यालय के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं और शुरू से बहुत सारी जिम्मेवारी भरा कारोबार दादी जी ने संभाला है। आज हम इतनी जो टीचर्स बहने हैं उनको तैयार करना, सेंटर्स में भेजना, सेट करना, एडजस्ट करना, ये सारी टीचर्स ट्रेनिंग, सेंटरों का सर्टिफाई करना, मैंने बहुत सारा कारोबार दादी संभालती हैं और अभी भी संभाल रही है। और 93 की आयु है पर दादी अभी भी इतनी ही एक्टिव है, रोज सुबह मॉर्निंग क्लास दादी हमें कराती हैं। ये है ये ब्रह्मा के, ब्रह्मा स्वयं और उनके ये और तीन मुख, इन दादियों ने मिलकर चारों ही दिशा में भगवान का ज्ञान फैलाया है। तो बाबा सदा कहते थे कि ये ब्रह्मा के और तीन मुख है, इन त्रिमूर्ति दादियों ने हेड बनकर जिम्मेवारी से पूरे संगठन को चलाकर विश्व में भगवान का संदेश फैलाया है। और ये दादी ब्रिजेंद्रा, बाबा की पुत्रवधू, जिसने बाबा शिव बाबा के अवतरण का दृश्य देखा था, बॉम्बे सायन सेंटर में रहते थे और महाराष्ट्र जोन को संभालते थे। ये दादी गंगे, क्योंकि यूपी में, यूपी जोन की हेड थी और दादी भी ज्ञानदान की सेवा में बहुत एक्सपर्ट थी। ये दादी और मनोहर दादी वो एग्जाम्पल है, क्योंकि ये छोटी आयु के थे और ये बाबा के सत्संग में आने लगे, इनको इनके माँ बाप, क्योंकि छोटी आयु के थे तो उनको माँ बाप के आग्रह पर वापस घर में जाना पड़ा था और उनको 9 ताले लगाकर घर में बंद करके रखा जाता था, पर इनकी लगन में कोई अंतर नहीं हुआ। तो आखिर इनके माँ बाप ने परमिशन लेटर दिया और दोनों यज्ञ में समर्पित हुए और बहुत, मतलब एग्जाम्पल कि जिनको भगवान से प्यार है वो कोई भी बंधन में कभी अटकते नहीं हैं। और ये दादी हृदय पुष्पा सिंधी, बाबा ने उनको साउथ इंडिया बेंगलोर भेजा, भाषा भी नहीं जानती, इंग्लिश भी नहीं जानती, पर इतनी योग की मूरत थी कि उन्होंने साउथ में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरला, वहां अपने दिव्य साक्षात्कारों से उसने बहुत सेवाएं की और वहां ऐसे हैंड्स निकले जिन्होंने बहुत सुंदर सेवाएं फैलाई। और ये दो यज्ञ निवासी आदि से, क्योंकि जब आबू में आए तो लगभग बहुत कम भाई थे, हमने जो 69 में देखा तो सिर्फ 5 भाई थे, उसमें से ये दादा विश्वरतन सफेद बाल वाले और वो दादा चंद्रहास। विश्वरतन दादा अकाउंट संभालते थे और चंद्रहास दादा कंस्ट्रक्शन संभालते थे। और ये है भारत का प्रथम आत्मा जिसने भारत में यज्ञ आने के बाद ये प्रथम भाई जिन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, और जगदीश भाई जी, जगदीश चंद्र हसीजा, जिन्होंने भगवान के सत्य ज्ञान को चिंतन करके ऐसा बनाया साहित्य जिससे विश्व की करोड़ों अरबों आत्माओं को संदेश भेजा। तो जो इस विद्यालय का मूल साहित्य है सारा, उनके लेखक जगदीश भाई जी। बहुत ही विशेष आत्मा थी, ऐसा कोई फील्ड नहीं जिसका गहरा ज्ञान उसके पास ना हो। और बस एक मिनट, ये निर्वैर भाई जी जो अभी इस विद्यालय के सेक्रेटरी जनरल हैं और अभी यहाँ विद्यमान हैं, हेडक्वार्टर में रहते हुए वो सारा संभालते हैं। ओम शांति। 3 मिनट बाबा की याद का गीत बजेगा। बज गए? 3 मिनट बाबा की याद में बैठेंगे।